मिलन का कि का आविर्भाव तिथि है। आज सवेरे से ही उपवास रहेगा, यदि हो सके तो रात तक, आधी रात तक निर्जला उपवास रहिए। और जो रोगी वृद्ध इत्यादि हैं जिनसे नहीं हो सकता, वे लोग कुछ जल या शिकंजी इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा है रात तक उपवास ही किया जाए, ये भी एक तपस्या ही है। तो अभी हम लोग कुछ चुने हुए स्तव स्तुतियाँ करेंगे और इसके बाद में दशम स्कंद भागवत पाठ होगा, बीच में कीर्तन होंगे। एक लिस्ट बना लेना कौन कौन सन्यासी ब्रह्मचारी लोग पाठ करेंगे, और इसके बाद में शाम तक ये चलता रहेगा, 6:30 आरती के पहले तक। और इसके बाद में आरती हो जाने के बाद में बाहर में वहाँ पर बैठेंगे, और वहाँ पर भी अच्छे अच्छे लोग कीर्तन करने वाले आएंगे, कृष्ण के चरणों में कीर्तन के माध्यम से पुष्पांजलि चढ़ाएंगे। अभी हम लोग स्तव स्तुतियाँ करेंगे, जिसमें पहला ही है श्री मंगल गीतम। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके निजजन हैं, उनका गुणावाद गुणानुवाद के साथ में कृष्ण का स्तव हो तो वो बहुत सुंदर है। निजजनों में श्रीमती राधिका जी उनकी सबसे प्रियतमा हैं, इसलिए जयदेव कवि ने, जो महाप्रभु से पहले हो गए हैं कुछ, उन्होंने गीत गोविंद रचना करते समय में इसी पद का पहले गायन किया। और इसका पद का गायन सुनने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी आकृष्ट होकर के प्रेम में पागल होकर के दौड़ते थे सुनने के लिए। यहाँ तक कि जगन्नाथ देव अंदर में बंद हैं, कितने ताले लगे हुए हैं, और कोई देवदासी कीर्तन कर रही है पास ही वन में, और दरवाजा खोलकर पागल होकर के उसके पीछे दौड़े। झाड़ियाँ थी, झाड़ियों में कांटे, और उनके कपड़े फट गए, शरीर में भी खरोंच आ गए। जब लौट करके आए, सवेरे आरती का समय हुआ, तो पुजारी ने देखा जी उनके कपड़े फटे हैं और शरीर में ये खरोंच और दाग लगा हुआ है। बहुत चिंतित हुआ, ये कैसे हुआ। तब फिर स्वप्न में बतलाया, ये देवदासी गा रही थी इसलिए ऐसा हुआ, मैं सुनने के लिए गया। और चैतन्य महाप्रभु एक दिन चटक पर्वत की तरफ में जा रहे थे, गोपीनाथ टोटा के तरफ में, और किसी देवदासी ने जोर से कीर्तन किया यही, और महाप्रभु पागल हो उठे और दौड़े उसको आलिंगन देने के लिए। जब दौड़ करके उसके निकट में आए तो गोविंद जी महाप्रभु के समान दौड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने जोर से कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, गाने वाली कोई स्त्री है, नवज्योति है। जोर जोर से बोले तो उनके कान में आया तो रुक गए, और बोले ये तुम नहीं होता तो मैं अपना प्राण प्रत्याग कर देता, यदि स्त्री का स्पर्श कर लेता तो। ये कृष्ण को प्रसन्न करने वाला सबसे ये है। क्यों? पहले ही उसमें शीत कमला कुछ मंडल धित कुंडल धित कुंडल ए कलित ललित बनमाल जय जय देव हरि। शीत कमला कुछ कमला सर्वलक्ष्मी मई श्रीमती राधिका जी कमला है। दिस श्लोक इज दिस पद मंगल गीतम इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू महाप्रभु एंड टू जगन्नाथ। इफ एनी देवदासी इज डूइंग कीर्तन एट वंस जगन्नाथ विल अनलक ऑल द अनलक्स and he will run after that Devadasi. Even in Seva Kunja, so many thorns, they will scratch in his body. Even he will run and run away. And when he will return back in the temple, Pujari, what happened? And they will complain to super officers, and then Jagannath will give dream that any Devadasi was singing and I was falling, so scratches came. Mahaprabhu once heard this kirtan, any Devadasi was doing, that was lady, and Mahaprabhu run after her. When he came nearer, and at once Govinda told, Prabhu, Prabhu, where you are going? This singer lady, if you will touch, what will happen? Then Mahaprabhu stopped. Oh, you have saved me. Otherwise, if I had touched her or Alingan, then I would have died. So this is so attractive. Because, kyaun? Sita kamala kucha mandala. Sarva lakshmi mai radhika. Ye istriyon ka sabse sundar anga baksh sakchal hota hai. Krishna uska ashray le karke khade nahi to gir jayenge. Batlaya na? बेणु करान्निपतितं स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टञ्च पीतवसनं ब्रजराजसूनु जस्या कटाक्ष सरघात विमूर्च्छितस्य तं राधिका परचरामि कदा रसेन। उस राधिका जी की मैं कब परिचर्चा करूंगा? रस के साथ में। रस माने रूपमंजरी जैसा तप्त रस। बेणु करान्निपतितं, उनकी बेणु हाथ से गिर गई। क्यों? जिस बेणु से गैयों को संभालते हैं और गोपी गोपी मान कर लेगी तो बंसी वादन के द्वारा उसका सब मान सब दूर हो जाएगा। बेणु उनकी प्राण है, किंतु ऐसी बेणु भी हाथ से गिर जाती है। और मुकुट सिर का मोर मुकुट ये भी गिर जाता है राधा जी के चरणों में, और खुद मूर्छित हो जाते हैं उनके कटाक्ष से। ऐसे राधिका जी की कब परिचय? ये सुनेंगे कृष्ण मुक्त हो जाए, इसलिए सबसे पहले दिनमणि मंडल मंडल भवखंड ने मुनिजन मानस कलित ललित वनमाल। सुंदर वनमाला धारण करने वाले, अथवा कानों में जैसे कुंडल धारण किया जाता है, वैसे राधा जी की महिमा दोनों कानों से सुन रहे हैं, विभोर होकर के सुनते हैं। ऐसे प्रभु की जय हो, जय हो। इसमें जनक सुता कृतभूषण जित दूषण आया है, ये भी कृष्ण की महिमा समझो। कहे कैसे, कृष्ण ही तो आए हैं राम के रूप में, इसलिए श्रीमद् भागवत में भी दिया गया है। इसलिए राम का जो वर्णन किया गया जनक सुता कृतभूषण, जनक नंदिनी सीता जी ने जिनके भूषण किए हैं अंगों के, जित दूषण है।
इसमें कृष्ण के चार सितार नायक के गुणों का वर्णन किया
है। अच्छा,
ललित शांत धीरुद्धत और उदात, तो इसलिए रामचंद्र जी का
ये दिया है उसे धीर ललित के लिए,
और कृष्ण के धीर ललित तत्व का
हाँ इसलिए धीर वर्णन किया। बहुत ऐसे ही सभी बहुत गंभीर गंभीर रहस्य हैं, कुछ टीकाओं में वर्णन किए गए हैं, कुछ से गंभीर हैं। अभिनव सुंदर धितमंदर श्री मुख चंद्र चकोर राधा मुख चंद्र चकोर जय जय जीव। राधा जी के मुखे को दर्शन करके चकोर जैसे बन जाते हैं, एक टक इधर उधर कहीं नहीं देखना, ऐसे कृष्ण बन जाते हैं। ऐसे कृष्ण को प्रणाम है, वो जय जय राधा जी से संबंध। श्री जय देव कबीर रीदम कुरुते मूदम मंगल मुज्ज्वल गीतम जय जय देव। बहुत ये प्रलय पयोधी चले हो गए छे उधर हृदय गोस्वामी ने भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। इसमें भी कुछ वैज्ञानिक रहस्य है। गुरु महाराज जी कहते थे कि ये विकास है, सृष्टि का विकास, और सृष्टि के विकास के अनुसार में भगवान ने अवतार लेकर के उन प्राणियों का कल्याण किया है। पहला तो ये, और दूसरी बात जैसे इसमें पहले मीन जल में रहने वाला, इसके बाद में कूर्मा दोनों जगह चलने वाला, और बड़ा केवल जल में चलने वाला, और निसिंह मनुष्य और सिंह दोनों का मिला हुआ रूप, और फिर उससे और चला गया बामन पुरुष,
किंतु बौना
बौना अभी बड़ा नहीं, और उसके बाद में परशुराम कुछ जंगली टाइप का लड़ालू झगड़ालू कुछ धीर कृष्ण के स्वभाव का तो परशुराम फरसे से सब क्षत्रियों को जो ब्राह्मण विरोधी थे उनको काटा, और इसीलिए उनके बाद में दो अवतार हुए, बुद्ध जी का और जैन वाला महावीर का, इसके विरोधी बन गए, विरोधी होकर के और ब्राह्मणवाद का खंडन किया उन्होंने। अच्छा, फिर परशुराम और राम बहुत ही सुंदर मर्यादा वाले, और इसके बाद में हलधर और इसके बाद में बुद्ध शरीर और अंत में कल्कि शरीर।
वर्णन
ये एक एक रस के ये विचार है इसमें। वैशिष्ट दिया है इसमें, रसों का भी वैशिष्ट। अच्छा, इसमें ये करो नंदनाष्टक एक साथ में,
नमामि नंदनंदन
बन के सुनागर हैं, अभी आ रही है,
कल आई थी।
बहुत अच्छा। मधु आई है वृंदावन सुनागर में, वृंदावन के सुनागर विलासानु का वास सब कंत मन भरा नहीं ऐसा कहने से वृंदावन सुनागर, इसलिए अंत में कहा प्रजंगना सुनारे सदा सुख प्रदायकम जगन मन प्रलोभनम नमा। ब्रजंगना कहने से यहाँ पर श्रीमती राधिका जी को ही अधिक समझो। यदि कोई नंदनाष्टम का इस पाठ करेगा श्रद्धा पूर्वक तो कहते हैं क्या होगा, लभेद अंग युग्म का संसार भव सागर का तो अन्यास तर जाएगा और राधा कृष्ण के जुगल चरणों में प्रेम होगा। ऐसे ये सब स्तोत्र हैं। मुनिंद्र बिंद बंदी दे तियो कसो कहारी प्रसन्न भक्त अंकले इस स्तव में राधा पिता कृपा कटाक्ष से सौ रहा है, बहुत ही गंभीर और गूढ़ रस से युक्त है। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते उज्ज्वल इन मनी जो पढ़ेगा समझेगा तो इसका अर्थ समझेगा या इस सभी का, ऐसे नहीं। हाव किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, हेला किसको कहते हैं, किलकिचित किसको कहते हैं, ये सब इसमें भरा पड़ा है। जो भजन साधन परायण है इस सबका पाठ करके बहुत ही आनंदित होंगे। और इसके लिए फिर देखो कैसा सुंदर ये बनाया है, मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके। अलंकार भी है, भाव भी बहुत गंभीर है, जितने भी लोग वर देने वाले हैं सबको भी वर देने वाली है। यहाँ तक कि राधा कुंड के तट पर कृष्ण उनकी आराधना करते हैं तो ये वर देती हैं, इसलिए वरदेश्वरी भी हैं। कहते हैं इसके लिए जो लोग पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी को तथा दोनों पक्ष की एकादशी को और त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि वाला भक्त इस स्तोत्र का प्रीतिपूर्वक पाठ करेगा तो जो उसकी भावना करेगा, जो भावना करेगा वही होगा, सब कुछ को देने वाला। जंग जंग कामयते कामम तं तं प्राप्नोति साधक, जो जो कोई कामना करेगा सबको प्राप्त करेगा। इफ एनी वन ऑन पूर्णिमा एकादशी अष्टमी एनी वन विल रिमेंबर दिस श्लोक एंड डू कीर्तन इन द वाटर ऑफ राधा कुंड लाइक दिस देन व्हाट ही विल वांट एवरीथिंग इज ऑल विशेस विल बी ऑल डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। और इस स्तोत्र से राधा कृष्ण जुगल का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मैंने इन आंखों से ही भगवान का राधा कृष्ण का दर्शन होगा। गोवर्धन के समीप राधा कुंड के जल में जंघा तक अथवा नाभि पर्यंत जल में या कंठ तक खड़े होकर के स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार कुछ दिनों तक पाठ पूर्ण करने से मनोवांछित समस्त कुछ प्राप्त हो जाता है, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति माधुर्य की भी। दर्शनार्थी भक्त को इन्हीं नेत्रों से साक्षात राधा जी का दर्शन हो जाता है। राधा जी प्रकट होकर प्रसन्नता पूर्वक महान वर देती हैं। इसे तत्काल श्याम सुंदर प्रकट होकर के नित्य लीलाओं में प्रवेश प्रदान करते हैं। इससे बढ़ करके वैष्णव के लिए कोई भी वस्तु देव भवंतम तो हो गया है सर, हो गया है। राधे जय जय साई तुधा। जन्म सफलता हरिदास। उपनिषदों में पुराणों में भागवत में गोस्वामी ग्रंथों में कृष्ण भजन करने से ही जीवन सफल होगा ऐसा माना जाता है, ऐसा सिद्ध है। जो लोग कृष्ण का भजन नहीं करते उनका जीवन विफल है। उसके लिए ये लोचन दास कह रहे हैं, एमन माधव ना भजे मानो कखन मरिया जा, वो कब मर जाएगा, जन्म लिया है मरेगा तो कीट और पैखाने के कीट के समान मरेगा। रौ रवे कृमिते खावे, जम तो प्रहार करेगा और कृमि उनको खाएंगे, कीड़े काट करके खाएंगे। ताकर आर पापी नहीं आर, संसार जगत माझे कौनो कालकार गति नहीं यार, मिछाई भ्रमिश। ऐसे लोगों का मुख कहते हैं ये, तार मुख नहीं देखी, उनका मुख हम दर्शन नहीं करना चाहते जो भगवान का। वो तो मरेंगे ही, कीड़े ये सब खाएंगे हैं। जो लोग बस जीवन में ऐसे ही बिता देते हैं, वैष्णव में भी वैष्णव नाम धारण कर वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, उनमें विश्वास नहीं करते हैं, उनकी ना जाने क्या गति होगी। इसलिए सब छोड़ छाड़ करके भाई और बहनों और बेटियों भजन करो, कभी भी दूसरे की निंदा मत करो, कभी नहीं, अपना देखो दुर्गुण, और नहीं तो तुम ही को भोगना पड़ेगा। खूब याद रखो अच्छी तरह से, यदि हरि गुरु भजन करने आए, हरि गुरु वैष्णव लोग प्रसन्न ही नहीं हुए तो जीवन के लिए ये लोचन दास कहते हैं, उसका मुख नहीं देखना चाहते हैं और वो जीवन एकदम बेकार का है। और एक कीर्तन धर तुम, तमाल तमाल एर मत तुम धर भी तो धर। और इसमें जिसकी रुचि नहीं वो कैसा है, ऐसे वैष्णव संघ को प्रधानता नहीं देती, उनके जीवन को कोटि कोटि बार धिक्कार है। चलो
जमुना बोली ने,
ये जो कीर्तन कर रहे हैं कह रहे हैं, हे सखी आश्चर्य में भर करके, और पूछे सखी आज मैं जमुना के किनारे मैंने उपवन में मैंने क्या देखा, उसी का वर्णन कर रहे हैं। बोलो
हमें जमुना पुली ने कदंब कनों ने गिहरिनो सखिया, जमुना पुली ने कदंब कनों ने गिहरिनो सखिया, मणिमंच परी करे लीला रसना, मणिमंच परी करे लीला रसना, बाबा श्याम वंशी धारी मणिमंच परी करे लीला Hey!
बंगला कवियों ने बंगला को भी उन्हें राधा कृष्ण लीला का इतना उन्नत रसमय भाव से वर्णन किया है, किसी भी और दूसरे कवियों ने नहीं वर्णन किया। हिंदी में ये सब चीजें नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता था जिसे इसका अनुवाद करके और सब भाषाओं में दी। कितना सुंदर ये कीर्तन, हिंदी में या दूसरी भाषाओं में ये सब उपलब्ध नहीं है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये लोगों ने लिखा। जितना सुंदर वर्णन करने सकी, वृंदावन में मैं गई और देखा क्या, जमुना के किनारे दोनों किनारे पर बेली चमेली जूई कदम्ब के फूल खिले हुए हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे, कोयल कुहू कुहू कर रही, मयूर नृत्य कर रहे हैं, पूर्णिमा का चांद अभी निकला है, उसकी रोशनी से लाल लाल वन रंजित हो उठा है। और उसमें हमने देखा क्या, अष्ट सखियों से परिवेष्टित होकर के श्रीमती और किशोर किशोरी जी रास कर रहे हैं। उसको देख करके फिर मैं लौट नहीं सकी, अब मैं नहीं लौटूंगी घर में, अब तो सास ससुर सबकी लज्जा को छोड़कर, लोक लज्जा सब छोड़ करके पति इत्यादि की, अब तो मैं वन में ही रह करके उस लीला का दर्शन करूंगी और ध्यान करूंगी, अब मैं घर नहीं लौटूंगी। कितना सुंदर भाव ये सब। इसलिए इन सब को कीर्तनों को भावों को ग्रहण करके भजन करो और इनकी भावना करो। इसमें एक ऐसा रस है जो उसमें डूब जाने से संसार अपने आप दूर हो जाएगा, उसके कष्ट भी दूर हो जाएंगे, कोई अब पर चर्चा की बात ही नहीं रहेगी। ऐसा लगाओ मन को जो मन इधर उधर न जाए, जैसा ये कह रहे हैं विनोद कोई है, भक्ति विनोद ठाकुर। वाह, भक्ति विनोद ठाकुर के अतिरिक्त ऐसा कौन लिख सकता है। हमने कहा विनोद कौन, गुरु जी का नाम याद आ गया विनोद। तो अब तो 8:15 बज रहा है, थोड़ा हमको भी विश्राम करना पड़ेगा, किंतु इच्छा नहीं कर रही जो उठूं, इच्छा कर रही है जैसे यही सब करते 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 शाम और रात बीत जाए। यद्यपि बाहर के लोग आते हैं कीर्तन करते हैं बड़े सुंदर, किंतु इसमें जो रस भरा पड़ा है उन सब के कीर्तनों में वो सब रस नहीं भरा पड़ा, तभी उनको उत्साह देने के लिए बुलाते हैं। 8 जन्माष्टमी है, आज आधी रात में वृंदावन में ब्रज में भी और मथुरा में भी स्वयं भगवान आविर्भूत होते हैं। उनके अवतार के बहुत से कारण हैं, बहुत से एक दो नहीं हजारों कारण हैं, किंतु कुछ शास्त्रों में निर्णय किए गए हैं, किंतु वही तक उनका कारण निहित नहीं है। जैसे कहा गया है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम् सीयाम्यहम्। धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापन करने के लिए। कौन धर्म की, लोक धर्म, लोक धर्म तो भी हो जाता है मूल, ये सनातन नित्य धर्म। क्या नित्य धर्म, यही जो कीर्तन हम लोगों ने किया, असुरों का दलन कर, यह प्रेममय जो है कृष्ण की लीला इत्यादि विलास, इसकी प्रतिष्ठा करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए आए। यदि कृष्ण अपनी परिकरों के साथ में जगत में नहीं आविर्भूत होते तो उनकी इन लीलाओं का गायन व्यास और सुख ये सब कैसे करते, नहीं कर सकते। इसलिए भगवान अनुग्रह करके आते हैं, इसलिए इन लीलाओं को करेंगे। उस समय के लोग जो देखेंगे, उस समय के लोग देखेंगे और पीछे उसका श्रवण करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, अनायासी भवसागर को पार कर जाएंगे, इसका वर्णन करेंगे। विक्रीडितम ब्रजवधूभिः इदं च विष्णो अनुसृणुयात् अथ वर्णयेत्यजः भक्तिं परां प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाशु अपिहिनोत्यचिरं। इन लीलाओं का यदि कोई अनुसृणुयात् गुरुमुख से श्रवण करे और फिर उसको अपने छंदों में, अपनी भाषा में या दूसरों की भाषा में इसका वर्णन करे, तो कृष्ण की प्रेममयी भक्ति, काममयी भक्ति आएगी और हृदय का काम रोग सदा के लिए दूर हो जाएगा। एक आदमी का मन बहुत चंचल था, सब समय काम में उसकी चिंता रहती थी, तो भक्ति वेदांत स्वामी जी से पूछा, मैं क्या करूं, हमको सब समय काम आता है। तो कृष्ण की रासलीला पढ़ो। सब लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ और प्रभावशाली है इनकी लीला। इनका यदि अनुसरणिया काम रोग भी सब कुछ दूर हो जाएगा सदा के लिए। जो नहीं सुनेगा उसके लिए कहते हैं सुनियात विधिलिंग,
सुनना चाहिए,
ऐसा होना चाहिए। और उसके राष्ट्रपंच अध्याय के अंत में उन्होंने कहा ना इन लीलाओं का श्रवण कर, तुम लोग बड़े सौभाग्यवान हो, इस सौभाग्य का काम में लाओ, दिन रात इसका चिंतन पठन पाठन ये सब करो और जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण ने आज मथुरा में आंशिक रूप से जन्म ग्रहण किया और पूर्ण रूप से ब्रज में गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से पूर्ण रूप में। किंतु श्रीमद्भागवत में स्पष्ट रूप से इसी का वर्णन किया मथुरा में, और प्रच्छन्न रूप से वर्णन किया गोकुल का, क्योंकि प्रच्छन्न बाद शायद रसमय होता है, परोक्षो बाद ये कृष्ण को बहुत प्रिय है। एक बार मैंने कहा था कभी और फिर स्मरण आ गया, कहता हूँ बतला रहा हूँ, मुझको कई शास्त्र में तो हमने पढ़ा नहीं है किंतु मैं अपने मन से अनुमान करता हूँ, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी बड़े रसिक थे, उन्होंने विचार किया कि जगत के लोग प्राय मूढ़ होते हैं, बहुत कम चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। यदि गोकुल में कृष्ण का जन्म मान लिया जाए ऊपर से, तो कृष्ण तत्व और अप्राकृत ब्रज तत्व तो समझते लोग नहीं, वो कहेंगे पीछे से तत्व ये कृष्ण जो ब्रज में जन्मे तो उन्हीं की भाभी उन्हीं की बहन उन्हीं की ये सब कृष्ण के साथ में रास किया, उनके साथ में परकीय भाव किया, तो कृष्ण की निंदा करेंगे। इसलिए इस विषय को प्रच्छन्न रख करके मथुरा में जन्म लिए उनका मान लिया जो इस भाव का कृष्ण हुए जदुवंशी और उधर ब्रज के तो वो ब्रज की हैं, तो इसलिए कृष्ण वहाँ गए तो उनसे प्रेम हुआ था, ये कोई खराब बात नहीं है। इस विषय की ओर चिंता करके आया समझ में, बहुत गूढ़ बात है, इसलिए शास्त्रों में नहीं लिखा किंतु मैं समझता हूँ कि और इसीलिए ऐसा किया। ब्रज में यदि मान लिए तो राधा जी उनकी क्या लगेगी, वो बहन टहन ये सब या भौजाई लगेगी, भौजाई क्या कहते मामी कहते हैं भौजामी, और क्या क्या संबंध वो लग जाएगा तो फिर प्रेम कैसे होगा, इसलिए रसाभास हो जाएगा और वो लोग समझेंगे नहीं जे राधा और गोपियां कृष्ण ही हैं, कृष्ण है उनकी अंश कला, अंश कला मैंने क्या 64 कलाओं में से एक एक कलाएं हैं, ये सब कृष्ण ही हैं, नहीं समझेंगे। गोलोक वृंदावन से इसी रस का आस्वादन करने के लिए आए हैं, नहीं समझेंगे इन सब कारणों से। आज ही प्रकट होकर के फिर किस प्रकार से पूतना का वध किया, किस प्रकार से तृणावट शक्तासुर इत्यादि का वध किया, इसमें कितनी शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। धेनुकासुर का वध किया और गिरिराज गोवर्धन को उठाया, क्यों उठाया, इंद्र पर बहादुरी करने के लिए नहीं, इंद्र को शासन करने के लिए नहीं, मत समझिए ये तो ऊपर की बात है बाहरी बात, भीतर से क्या है, जितनी भी गोपियां हैं नवेली, अभी तक कृष्ण से भेंट नहीं हुई आमने सामने, इसी बहाने सबको बुला लिया गिरिराजन को धारण करके, एकदम सब निकट में आ रही हैं गोपियां राधा इत्यादि। पहला ये समय है जबकि सब गोपियां एक साथ में कृष्ण से निकट में मिली। उस समय में नंद बाबा या घर का कोई कहने वाला नहीं है जे क्यों आई, सभी डर करके मारे आए हैं, वर्षा के कारण भिजने के कारण आए हैं, और विपद में कोई नियम टियम नहीं रहता, इसलिए सब गोपियां मिली अनुराग की पराकाष्ठा। और कृष्ण बहादुर, देखो मैं कितना बलवान हूँ जो गोवर्धन को उठा दिए, किंतु नहीं समझ रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत कौन धारण किया, बाएं हाथ में, बाएं हाथ में, बाएं तरफ में कौन रहता है, शक्ति रहती है, ये शक्ति राधा जी ने उठाया, यदि गिर जाएगा हाँ भस्मीभूत कर देंगी, पलकों पर उठा लिया ऐसे ही दृष्टि पर, ऐसी ऐसी सब लीलाएं हैं। ये ब्रह्मा जी को मोह हुआ, एक साथ में कितनी लीला संपादन किया, इसका कोई अंत नहीं, टिकाए नहीं होती, हम लोग कुछ नहीं समझते। सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और लोग हैं बहुत से टीकाकार, हजारों हैं, किंतु इनके पासंग में कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा। श्रीधर स्वामी को खूब सम्मान दे करके लिखा, किंतु कहीं कहीं पर उन्होंने कह दिया श्रीधर स्वामी जी का यह वचन अभिप्रेत नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी तो बड़े तेजी आदमी हैं, उन्होंने ये सबका वर्णन किया है। कितना तुम लोगों का सौभाग्य जी ये बातें सुन रहे हो, बहुत सौभाग्यवान लोग हैं। इसलिए भगवान का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, राधा जी का भजन करो, सुखी रहो। अब समय हो गया है, अभी थोड़ा सा परिक्रमा करके एक चौकी यहाँ रखवा देना, ऊपर में पाठक लोग देख करके चौकी एक व्यवस्था करा दो तो, और उस पर पाठ की व्यवस्था कर दो, और तीर्थ महाराज, बन महाराज, माधव महाराज, हमारे रसानंद, और ये तुम रहेगा कि चला जाएगा, नहीं तो ये श्याम भी बड़ा अच्छा हुआ जो आ गया, तो ये सब ठीक, तो ये सब आए हुए हैं, ये सब भी पाठ करेंगे, बीच बीच में कीर्तन करा देना तुम लोग, और शाम को तक ये चलता रहेगा। भोग आरती भी होगी शयन में, दोपहर को हमारे ब्रज प्रेम बल्लभ को बैठा देना, भागवत पाठ करेंगे जोर से, ठीक।